they should observe a festival for his name-giving ceremony. In this connection, we can particularly see how an incarnation of the Supreme Personality of Godhead is ascertained by his bodily symptom. His activities and the prediction of the Shastra. By factual evidence, a person can be accepted as an incarnation of God, not whimsically or by vote of rascals and fools. There have been many imitation incarnations in Bengal since the appearance of Lord Chaitanya. But any impartial devotee or learned man can understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu was accepted as an incarnation of Krishna, not on the basis of popular vote, but by evidence from Shastra and bona fide scholars. It was not ordinary man who accepted Sri Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead. In the beginning, his identity was ascertained by learned scholar like Nirambar Chakravarti, and later all his activities were confirmed by Six Goswami, especially Sri Jiva Goswami, Sri Rupa Goswami, and many other learned scholars. With evidence from the Shastra, an incarnation of God is such from the very beginning of his life. It is not that by performing meditation one can become an incarnation of God all of a sudden. Such false incarnations are meant for fools and rascals, not for sane men. Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Sarakaya Chakcho Jemilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Bhutair Mahadabhi Yaima Puro Vibho Nirmayase Te Yadamus Purusam Bhukte Gudan Sodasa Sodasatmakam Solam Krishistam Bhagavan Vachansime Gurave Gaur Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhavaradhika Madhuri Aswadai Sukhakaj Jayati Krishna Chaitanya Kali Prakate Brajaraj Jai Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare तो कल तक हम लोगों ने सुना था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जब पांच चिन्ह को नीलांबर सची माता और जगन्नाथ मिश्र देखे तो उन्हें आश्चर्य हुआ था. ये पांच चीज क्या क्या थे एक धीरे धीरे एक करके. पाला शंख चक्र गदा ध्वजा और मीन मछली. ठीक है, ये पांच चीज चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सची माता और जगन्नाथ मिश्र देखे. उसके बाद जगन्नाथ मिश्र अपने ससुर नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाए, जो अपने समय के जाने पहचाने बड़े नामी विद्वान पंडित और ज्योतिषी शास्त्र के मर्मज्ञ थे। हमारे सब असिस्टेंट एक भी यहां दिखाई नहीं पड़ता है, तीन हैं, तीनों सो रहे लगता है। विष्णु वगैरह पता नहीं दिखाई नहीं पड़ते कहीं पर, हरादास भी नहीं है। कहां गया हरादास? मायापुर नहीं गया ना? पहले जमाने में कुछ स्थान थे जो विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे, यथा काशी, बनारस, जनकपुर, नवदीप, कांची, मथुरा, ये सब स्थान विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। जैसा कि हम लोग सुने हैं कि सुबुधि राय को जो नवाब हुसैन ने मुसलमान बना दिया था पानी पिला करके, तो सुबुधि राय पुनः हिंदू बनना चाहते थे, तो इस बात का पता लगाने के लिए वे काशी गए, क्योंकि बताएगा कौन तरीका हिंदू बनने का? ब्राह्मण लोग बताएंगे, पंडित लोग बताएंगे, तो काशी गए। तो काशी के ब्राह्मणों से जब पूछे तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिएगा कि लोहा को खूब गर्म कीजिए, और जब लोहा पिघल जाएगा, पानी के समान हो जाएगा, तब आप उसको पी लीजिएगा, तब आप हिंदू बन सकते हैं। समझ गए ना कहने का मतलब? इस जन्म में संभव नहीं, मर जाओ। अरे पिघला हुआ लोहा कौन पिएगा उतना गर्म? तो ये तो होने वाला नहीं था। तब वहां से वे कांची गए, दक्षिण काशी गए। जब दक्षिण काशी गए तो वहां के ब्राह्मणों ने कुछ कंसेशन दिया, उन्होंने सब बात बताया, तो वहां के ब्राह्मणों ने कंसेशन दिया और उन्होंने क्या कहा कि लोहा तो नहीं लेकिन तेल को खौलाओ, और खौलते हुए तेल को पी लोगे तब हिंदू बन जाओगे। कंसेशन थोड़ा दिए, यानी वो भी कहे कि इस जन्म में तुम हिंदू नहीं बनते, मर जाओ। वास्तव में बहुत से हिंदू मुसलमान बने हुए हैं, उसके कारण आजकल के तथाकथित ब्राह्मण लोग हैं। ये दुष्ट ब्राह्मणों ने ही लोगों को मुसलमान बना दिया। पहले जमाने में अलग अलग कुआं होता था, हिंदुओं का कुआं अलग, मुसलमानों का कुआं अलग। यदि मुसलमान जाकर के अपने घर से एक बाल्टी पानी हिंदू के कुएं में डाल देता है, और जो व्यक्ति पानी खींच करके लाता है और पीता है, ऐसा मुसलमान बन गए। ये मूर्ख ब्राह्मणों का एक काम था, ऐसा करते थे। तो यही मूर्ख ब्राह्मण उन दिनों भी थे, 500 साल पहले भी, जो कि सुबुधि राय को ऐसा सलाह दिए हिंदू बनने के लिए। उसी समय महाबदान्य भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का यात्रा कर रहे थे। तो सुबुधि राय का मुलाकात हो गया भगवान चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु से जब मुलाकात हुआ, वे अपना सारा वृतांत बताए, सब बात बताए, तो चैतन्य महाप्रभु के ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब पाखंड है, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपली आप कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, पापी तापी यत छिल हरि नामे उद्धारिल। भगवान चैतन्य महाप्रभु सुबुधि राय का उद्धार किए। तो मैं कह रहा था ब्राह्मणों के संबंध में, वैसे ही नवदीप विख्यात था ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए, बड़े पंडित लोग थे। नीलांबर चक्रवर्ती पंडितों में शिरोमणि थे, और चैतन्य महाप्रभु के नाना लगते थे नाते में, कद पद सब प्रकार से वृद्ध थे, बड़े थे। तो उनको बुलाया गया, तो माता पिता ने देखा था उनके चरणों में पांच लक्षण। और नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं कि जब ये बालक का जन्म हुआ तो जिस समय उसका जन्म हुआ उस लग्न को देख करके मैं समझ गया कि यह बालक कोई समान बालक नहीं, इस लग्न में, इस नक्षत्र में, इस समय में जिसका जन्म होगा वह कोई समान नहीं होगा, वह महापुरुष होगा। और महापुरुष के जितने भी 32 लक्षण जो थे वह चैतन्य महाप्रभु में पाए गए थे। इसलिए नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये सब लक्षण देख करके यह बालक उसके हाथ को देखे, महाप्रभु के हाथ को देखे और लक्षणों को देख करके, ये सब देख करके यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं लगता है, यह साक्षात नारायण है। और आगे चल करके पूरे विश्व का यह कल्याण करेगा। ए शिशु सर्वलोक करीबे तारौन, पूरे संसार का कल्याण करेगा, सबका कल्याण करेगा, लोगों में कल्याण करेगा। उतना ही नहीं, लोगों का ही कल्याण नहीं करेगा, यह बालक दोनों वंशों का कल्याण करेगा, यदि माता और पिता दोनों वंश का वो कल्याण करेगा। जिस परिवार में एक भक्त हो जाता है, जिस परिवार में भगवान आते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज से नरसिंह भगवान कहते हैं कि 21 पीढ़ी, 21 पीढ़ी आगे और पीछे सब तर गए, तो दोनों कुल का निस्तार हो जाता है एक वैष्णव के जन्म लेने से। तो बहुत जरूरी है कि हम वैष्णव बने और लोगों को वैष्णव बनाएं। नीलंबर चक्रवर्ती अपने सौभाग्य को समझ कर करके, भगवान चैतन्य महाप्रभु कुछ थोड़ा बड़े हो गए थे तो 10 विधि संस्कार जो है, जैसे गर्भाधान संस्कार, उसके बाद नामकरण संस्कार, तब समय आया नामकरण संस्कार का। संस्कार का अर्थ क्या होता है? सम आकार, सम मतलब वास्तविक, आकार मतलब स्वरूप। वह विधि जिस विधि से हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझें वह संस्कार कहलाता है। तो वैदिक पद्धति में ये जो नियम कानून थे ये बनाए गए थे, और यह नियम कानून यदि कोई पालन करता तो उसके स्वरूप को वह बोधित कराता, बतलाता। इस संस्कार, हम लोगों का स्वरूप क्या है? जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जितने संस्कार हैं यह बतलाते हैं कि तुम कौन हो? कृष्ण के दास हो। ये एक स्वरूप है। और जब दास्ता करना शुरू करेंगे, भगवान का सेवा करना शुरू करेंगे, तब अपना स्वरूप लक्षण प्रकट होगा। पहला स्वरूप है तो रस लक्षण है कि हम कृष्ण के दास हैं, और स्वरूप लक्षण है कि हमारा कृष्ण से संबंध है। किस रूप में संबंध है? दास्य, साख्य, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये सब मैनिफेस्ट होता है सेवा करने से, सेवा करने। लेकिन सेवा करना हमारा स्वरूप है, यह बात आता है संस्कार से। दुख की बात है कि आज के समाज में ये संस्कार नहीं दिए जाते हैं। जय श्री श्री गौर निताय की, जय राधारास बिहारी की, जय सीताराम सुमन। और संस्कार नहीं देने के चलते आज का समाज किम कर्तव्य मूढ़ हो चुका है, समझ नहीं पा रहे हैं लोग क्या करें, क्या उचित है क्या अनुचित है। लेकिन आज से 500 साल पहले यह संस्कार सर्वत्र था, आज से कुछ साल पहले भी था, नामकरण हम लोगों को याद है गांव में नाम करने के लिए। लेकिन कोई भी संस्कार था, कोई भी फंक्शन था, उस फंक्शनों में भगवान नारायण और विष्णु की आराधना की जाती थी। प्रभुपाद जी कहते हैं फेस्टिवल और मदर ऑफ डिवोशन, जो उत्सव हैं वह भगवत भक्ति की जननी है, उत्सव से भक्ति प्राप्त होता है, कोई भी उत्सव हो। और पहले जमाने में कोई भी काम होता था लोग उत्सव मना लेते थे, ये तो संस्कार का बात है। खेती हो गया, खेती काट लिए तो एक उत्सव मना लेंगे, हैं? साउथ इंडिया में अपने वो भैंस को दौड़ाते हैं, बैल को दौड़ाते हैं ना, एक उत्सव मनाते हैं। महाराष्ट्र में कहीं वो गुड़ी पड़वा के समय क्या करते हैं, बैल को सजा करके उत्सव मनाते हैं। तो सब जगह अपने अपने एरिया के अनुसार उत्सव मनाने का तरीका है, और सभी उत्सवों में भगवान नारायण की आराधना की जाती है, नारायण पूज्य होते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं महोत्सव कर सब बोलाइय ब्राह्मण, आज दिन भाल करीब नामकरण। कहते आज हम लोग बहुत सुंदर समय है, आज का समय सुंदर है, ऐसे भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जब रावण मरने को था तो भगवान राम लक्ष्मण जी को भेजे कि जाओ रावण विद्वान ब्राह्मण है थोड़ा कुछ सीख करके आओ। तो रावण से सीखने जब लक्ष्मण जी गए तो रावण ने कहा शुभस्य शीघ्रम। कितने प्रचारक लोग यहां पर हैं, कोई लाइफ मर्ती पिक्चर है राधा कृष्ण प्रभु के अलावा और कोई नहीं है ना? डायरेक्टर साहब आनंद से हैं। तो कोई व्यक्ति चेक कहता है कि कल दूंगा तो आप बोलना देखो ये रावण का नीति है भाई, क्या शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम हो करो, पता नहीं कल क्या होना, मर जाओगे तुम कहां से चेक दोगे, तो आज ही दे दो। शुभ काम जल्दी करने चाहिए, चेक लेने में देरी मत करना, फटाफट ले लेना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम। तो नामकरण उत्सव का समय है, तो उन्होंने कहा कि शुभ कार्य आ गया है, अब इस शुभ कार्य में हमें यह कार्य करना चाहिए, नामकरण संस्कार करना चाहिए, और उसके लिए कहते हैं महोत्सव मनाना चाहिए। ये दुख की बात है कि आजकल जब ही बच्चा जन्म लेता है उसी दिन लोग नाम रखते हैं, अप्पू पप्पू टप्पू टमाटर पोटैटो कुछ नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रखते हैं। पहले ऐसा नाम नहीं था, पहले उसका संस्कार था और लक्षण के अनुसार। आजकल नाम है लक्ष्मीपति और भीख मांगते हैं रोड पर, ये कैसे लक्ष्मीपति हो गए, पहले ऐसे नहीं था। ब्राह्मण लोग ज्योतिषी लोग देखते थे और देख करके नामकरण संस्कार करते थे। यहां पर एक बात कह रहे हैं कि नीलाम्बर चक्रवर्ती की ब्राह्मणों को बुलाना, सब बुलाइए ब्राह्मण, ब्राह्मणों को बुलाइए, इसका मतलब अन्य लोगों को नहीं बुलाएं क्या, ऐसी बात नहीं है। कोई भी संस्कार हो तो ब्राह्मणों से की जाती है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मण करेंगे, और शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान ब्राह्मणों के मुखारविंद से भोग ग्रहण करते हैं, तो ब्राह्मणों को खिलाएं, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे तो डायरेक्ट भगवान को प्राप्त होता है, और वे ब्राह्मण लोग संतुष्ट होकर के वैदिक मंत्रों के द्वारा आशीर्वाद देते हैं। तो नीलाम्बर चक्रवर्ती यहां पर कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को बुलाइए, यानी अन्य लोग, जब ब्राह्मण आ गए तो जब 100 रुपये का नोट है तो उसमें 50 रुपया 20 रुपया 10 रुपया और कितना 5 रुपया 1 रुपया सब उसमें हो गया ना, जब 100 रुपये का नोट सब उसमें है। उसी प्रकार से जो ब्राह्मणों को बुलाएंगे अन्य ऑटोमेटिकली आ गए, जब ब्राह्मणों को इन्विटेशन किया तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब उसमें आ गए, यानी सबको बुलाइए और यह नामा करण संस्कार होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा सुंदर बात बतलाए हैं, जो अपने को आजकल भगवान घोषित करते हैं, दो प्रकार के लोग हैं जो अपने को भगवान घोषित करते हैं। एक तो स्वयंभू हैं, अपने आप अपने को भगवान घोषित करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके चेले चपाटी लोग इलेक्शन करके उनको भगवान बना देते हैं। उनसे पूछा जाए कि आप क्या भगवान हैं क्या, तो वे कहा नहीं मैं भगवान नहीं हूं, ये हमारे चेले लोग हमको भगवान कहते हैं, मैं भगवान नहीं हूं, यानी इलेक्शन के द्वारा हमको भगवान बना दिए। और कुछ निर्लज ऐसे हैं, प्रभा कहते हैं फुल्स एंड रास्कल, वो डिक्लेयर करते हैं, उन्हें लज्जा भी नहीं आती है कि मैं भगवान नहीं और भगवान कह रहा हूं। ये लोग हैं प्रिटेंडर। प्रभुपाद जी कहते हैं बेटर टू बी ऑनेस्ट स्ट्रीट स्वीपर देन ए प्रिटेंडर। ये प्रिटेंडर लोग हैं, ये धोखा देने वाले हैं। आज समाज में धोखा देने वाले और धोखा खाने वालों की कमी नहीं है। इसीलिए जब कोई अपने को भगवान डिक्लेयर करता है तो पहले चेक करना चाहिए, कोई भगवान को देखने दो, अपना पहले पैर दिखाओ, देखते हो हमारे पैर में ये पांच चिन्ह है कि नहीं। उसके बाद ये जो 32 भगवान के महापुरुष के जो लक्षण हैं, कोई एक भी लक्षण है कि नहीं, तुम्हारा नाक बड़ा है कि नहीं देख लेता हूं, हाथ जो है घुटना से बड़ा अजानुलंबित हो जाऊ, कनकाव दात हो, ये होना चाहिए। तो जितने भी ये 32 गुण हैं, हाथ बड़ा होना चाहिए, आंख बड़ा होना चाहिए, घुटना बड़ा होना चाहिए, छोटा छोटा दांत होना चाहिए, राक्षस जैसा बड़ा दांत नहीं होना चाहिए, छोटा दांत होना चाहिए, सॉफ्ट हेयर होना चाहिए, ये जो भी गुण है, तो ये सब पहचान है, ये लक्षण है। और लक्षण से हम वस्तु के का पहचान कर सकते हैं, लक्षण से वस्तु का पहचान होता है। जैसे किसी को रोग हो गया है, किसी को बुखार लग गया है, बुखार दिखाई पड़ता है, बुखार कोई देखा है अब तक से, कोई यहां पर है बुखार देखा, राजश्याम प्रभु आप बुखार देखे हो, लक्षण से बुखार का पता चलता है ना, सीट हो या गर्म है, हाँ इसको बुखार है थोड़ा, और नहीं तो क्या लगाते हैं मुंह में, क्या बोलते हैं, थर्मामीटर पता लगता है। तो लक्षण से, वैसे ही लक्षण से, तो इन लोग नलायक लोग जो हैं, इनके चेले चपाटी भगवान बनाते हैं, और इन भगवान को टूथेक हो जाता है, नाक में दर्द हो जाता है, एड्स से मर जाते हैं, पूनम भगवान थे ना, चले गए एड्स से, तो ऐसे भगवान लोग हैं। शास्त्र प्रमाण है, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला, सरलोके करीब से धारण पोषण विशंभर नामिहार एतो कारण। देखिए संक्षिप्त में कृष्णदास कविराज वर्णन किए हैं, इसका विशद वर्णन किया गया है चैतन्य भागवत में। अब महोत्सव मनाया जा रहा है, सब लोगों को बुलाया गया, ब्राह्मण लोग आए, सब लोग आए, वहां पर बैठे हुए हैं सची माता जगन्नाथ मिश्रा, नीलांबर चक्रवर्ती, भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने जंघे पर बैठाए हैं, भगवान को अपने जंघे पर बैठाए हैं, और भगवान को देख करके अब नामकरण कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ था, जिस प्रकार से भगवान श्री राम का नामकरण हुआ था, वैसे ही नामकरण हो रहा है यहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का। कहते हैं सरलोके करीब यही धारण पोषण, यह बालक जो है पूरे संसार का ये धारण करने वाला, यानी रक्षा करने वाला, और पोषण यानी पोषण करने वाला, मेंटेन करने वाला होगा, सबको धारण करेगा और सबको मेंटेन करेगा। क्योंकि विश्व को मेंटेन करेगा, विश्व का पोषण करेगा, धारण करेगा, इसलिए इसका नाम जो होगा, मैं इसका नाम रखता हूं विश्वंभर, विश्व को भरण पोषण करने वाला विश्वंभर। चैतन्य भागवत में यह बात बतलाई गई है कि भगवान नारायण पहले पृथ्वी को धारण किए थे वराह रूप में, वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए जो धारण किए हैं, और भगवान पूरे विश्व का पोषण करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम अहम बीज प्रदुभिता इत्यादि इत्यादि, मैं सबका पोषण करने वाला हूं। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह पवित्रम ओमकारम हरि कृष्णाम जजरेम च इत्यादि, सबके पिता हैं, सबके भरण पोषण करने वाले हैं। वही नारायण आपके पुत्र के रूप में आए हैं और वे पूरे इस कलयुग में सब लोगों का ये पोषण करेंगे, पोषण करेंगे। कैसे पोषण करेंगे? नाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम संकीर्तन के द्वारा सभी लोगों का ये पोषण करेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण आंदोलन के फाउंडर आचार्य हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन के फाउंडर आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु, और उन्हें फाउंड किया हरे कृष्ण महामंत्र को। इसके पहले एक वैदिक मंत्र था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यदि यूपी में प्रचार करने आप जाओ और हरे कृष्ण बोलो तो पंडित लोग गलत बोल रहे हो, वो बोलेंगे हरे राम हरे कृष्ण नहीं। उनको मालूम नहीं है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु सबके कल्याण के लिए, सबके पोषण के लिए, वस्तु वही है, दूध से ही दही बना हुआ है, लेकिन डायरिया हो गया है तो दही काम करेगा, दूध काम नहीं करेगा, है ना। तो जो एक्सपर्ट कुक है, वो जिसको डायरिया हो गया है बच्चे को पति को किसी को, तो मां क्या करती है, पत्नी क्या करती है, वो तुरंत दूध को खोलाएगी, दही बनाएगी और दही खिलाएगी, न कि दूध पिलाएगी, है? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ही उसी प्रकार के मां हैं। वो समझ गए कलयुग में सबको डायरिया हो गई है, इसलिए वे हरे राम नहीं दिए, वो का दिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स स्पेशली सेंट यूथ आर टेकिंग पार्ट इन दिस हरे कृष्ण मोमेंट, एंड हाउ सेफ एंड हैप्पी दे फील कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड इन देयर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स। भक्तों ने लिखा प्रभुपाद जी को, द नेम विश्वंभर इज ऑल्सो मेंशन इन अथर्ववेद संहिता 3.3.16.5, विश्वंभर विश्वसेन मां भरसा पाही स्वाहा। तो यह बालक का उचित नाम होगा विश्वंभर। सुनि सची मिश्रे रमने आनंद बढ़िल ब्राह्मण ब्राह्मिणी आनी महोत्सव कैल। तो जितने वहां पर ब्राह्मण ब्राह्मणी उपस्थित थे उन लोगों के साथ में महोत्सव हुआ, जब जा रहे थे वो ब्राह्मण ब्राह्मणी तो उन लोगों को खूब खिलाए पिलाए, और जो भी यज्ञ होता है या जो भी उत्सव होता है तो ब्राह्मणों को खिलाना पिलाना चाहिए ही, लेकिन साथ में जब जा रहे हो तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। जब दक्षिणा दोगे तब वो यज्ञ सफल हुआ। तो घर में किसी को खाने पीने के लिए आप बुलाओ गृहस्थ लोग तो दक्षिणा जरूर देना, नहीं तो फल सब वही ले। आप खिलाए हो किसी को ना, खिलाए हो तो पुण्य कार्य किए हो, भक्ति की वृद्धि होगी। आप ब्राह्मण को खिलाए वैष्णव को खिलाए, लेकिन दक्षिणा नहीं दिए
तो पुण्य उनके साथ चला गया, क्योंकि कर्म फल के अनुसार वो किया है वो खाया है तो कर्म फल उसको मिलेगा। लेकिन दक्षिणा देने से ट्रांसफर हो जाएगा, पैसा की जरूरत नहीं है, यानी कि पैसा ही द्वार पैसा देते हैं, पर लोग दक्षिणा देते थे। जिस प्रकार से विश्वामित्र जी को महाराज हरिश्चंद्र पूरे अपने राज्य को दान के रूप में दे दिए थे, इस बात ना दान दे दिए थे, लेकिन विश्वामित्र जी कहे जब तक तुम दक्षिणा नहीं दोगे इस दान का कोई फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तब हरिश्चंद्र को अपना देह बेचना पड़ा, अपने पत्नी सभ्या को बेचे, अपने बेटे रोहित को, सबको बेच करके और दक्षिणा चुकाए। वो दक्षिणा दिए तब वो दान का फल प्राप्त हुआ। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र इस वैदिक संस्कृति को जानते थे, इसलिए ब्राह्मणों को बुलाए, खिलाए पिलाए और बाद में दक्षिणा के साथ में उन लोगों को भेजे। प्रभुपाद कहते हैं, इन दिस वे द ब्राह्मणस आर प्लीज दे ब्लेस द फेस्टिवल बाय चैंटिंग वैदिक मंत्र एंड हरे कृष्ण मंत्र। आशीर्वाद देते हैं दिल से। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, हमारे भक्त लोग किसी घर में प्रोग्राम हो है? और प्रोग्राम के बाद कोई दक्षिणा दे देता है तो भक्त लोग खुलकर आशीर्वाद देते हैं, है ना? और दक्षिणा नहीं दिया तो कहें ये बदमाश है, कंजूस है, तो कुछ ये सही बात है ना, सब लोग जानते हैं ना, ये तो कोई छिपा हुआ बात नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन पहले ब्राह्मण लोग लालच से नहीं करते थे, ये गृहस्थों का धर्म था, गृहस्थ करते थे। इस प्रकार से कालांतर में भगवान चेतन महाप्रभु थोड़ा बड़े हुए। एत कत दिन प्रभुर जानु चक्र नाना चमत्कार तथा कराइल दर्शन। कालांतर में भगवान चेतन महाप्रभु अपने घुटनों के बल चलने लगे। हम लोग कहते हैं जो घुटनों के बल चलते हैं क्या कहा जाता है, बकैया चलना, बिहार में कहते बकैया चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। भगवान राम के, कृष्ण के घुटनों के बल चलने का बहुत वर्णन किया गया है। नूपुर बंधा हुआ था उनके करधनी में, पैरों में, और घुंघरू बांज रहे थे। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के करधनी और नूपुर के जब घुंघरू बांध रहे थे, जब चल रहे थे भगवान चेतन महाप्रभु अपने घुटनों बल, तो यहां पर कृष्णदास कविराज कहते हैं नाना चमत्कार तथा करी लो दर्शन। लोगों ने विभिन्न चमत्कार का दर्शन किया, उसमें से एक चमत्कार है, एक समय भगवान चेतन महाप्रभु जब बकैया चल रहे थे, घुटनों के बल चल रहे थे, तो भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करने के लिए देवता लोग तो आते ही थे, सब पशु पक्षी प्राणी भी आते थे। एक दिन एक कोबरा सांप, एक सांप आया, कोबरा सांप मानो अनंत से आए थे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु को का जो कंकड़ी उनके पैर का घुंघरू और करधनी का जब सुना, वो सुन करके आया था। भगवान चेतन महाप्रभु सांप को देखे और सांप को देख करके मुग्ध हुए। जो छोटे बालक होते हैं वे क्या सांप है, क्या आग है, क्या पानी है, वो नहीं देखते हैं। जो भी सामने आया पकड़ लेंगे, और यदि खाना पीना थोड़ा शुरू कर देते हैं तो जो भी सामने आएगा खा लेंगे है? और जब दांत थोड़ा निकलने लगता है तो और कुछ करेंगे है? कुछ भी काटेंगे। सब लोग जानते हैं इस बात को, तो सब लोग किए हैं, भले भूल गए हो लेकिन सबको याद होगा। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु उस सांप को देखे और सांप से लगे खेलने। उस समय कोई नहीं था। कुछ समय के बाद वह सांप जय श्री गौरनिथाय की जय, राधारास बिहारी की जय, सतनाम की जय। सांप अपना एक आसन बना दिया, क्वाइल। क्वाइल का मतलब क्या होगा हिंदी में? सांप ने क्वाइल बना दिया है?
आसन बना दिया, जैसे गोला आसन बना दिया, क्योंकि भगवान चेतन महाप्रभु छोटे थे ना तो गोला कर दिया। कुछ कुछ घरों में हम देखे हैं लोग बेड बनाते हैं, ऐसे गोलाकार बेड बनाते हैं, कुछ लोग लंबा बेड बनाते हैं, कुछ लोग गोलाकार यहां बैठते हैं स्पेशली, तो गोला बन गया और अपना फन उठा लिया। भगवान चेतन महाप्रभु बकैया चल रहे थे, अब उस सांप के उस गोलाकार जो अपने शरीर को बनाया था उस पर चढ़ गए और मानो जाकर के सो गए। ऐसा लग रहा था भगवान कारणवक साहिब विष्णु शेष नाग पर, देख रहे हैं यहां पर ना, जैसे गर्भवत साहिब विष्णु शयन किए हैं वहां पर, शयन किए हैं शेष सैया पर शयन किए हैं। अब जब सची माता इत्यादि सब लोग नुपुर सुन रहे थे, लेकिन जब भगवान शयन किए तो नुपुर नहीं बज रहा था, सब भाग करके आए, क्या हुआ? तो क्या देख रहे हैं, निमाई तो ये सोया हुआ है। हां, जब नामकरण हो रहा था तो स्त्रियों ने इनका नाम रखा निमाई, निमाई नाम रखा था। एक्चुअली सांप की घटना के बाद ही निमाई नाम आया, सांप के बाद आया निमाई नाम। तो सांप पर सोए हुए थे सब लोग, भयभीत थे, अब कोई नहीं जा रहा था सांप के पास, सब लोग डर रहे थे सांप से। जब सची माता पर चला तो वे आई। मां जो होती है वो अपने पुत्र के स्नेह को समझती है। जिस प्रकार से यशोदा मैया को जब पता चल गया कि कृष्ण कालिए दह में कूदे हैं, यशोदा मैया होश बेहोश होकर के दौड़ करके जा रही थी कालिए दह में कूदने के लिए, कृष्ण को बचाने की रक्षा करने के लिए, बलराम जी रोक दिए। ठीक वैसे ही सची माता अनंत शेष वहां पर हैं कुबरा के रूप में। सची माता जब दौड़ करके आ रही थी विशंबर को लेने के लिए, सब लोग डर रहे थे सांप से, लेकिन सची माता डर नहीं रही थी। जब दौड़ करके आ रही थी तो अनंत शेष भी अब समझ गए कि अब मां आ रही है, शायद वो भी न डर जाए कि सब लोग आ रहे हैं। तो धीरे धीरे अपना क्वाइल जो था ढीला कर दिए और धीरे धीरे वहां से चले गए। और निमाई बड़े आनंद के साथ में हंस रहे थे, खेल रहे थे। तो सब लोग विभिन्न वैदिक मंत्र उच्चारण करने लगे, कोई काली का प्रार्थना किया, कोई दुर्गा का प्रार्थना किया, कोई क्या किया, कोई क्या किया, ताकि बालक पर कुछ होने न पावे। तो कोई स्त्री कहती थी ये सजातीय सांप है, ये सांप वास्तव में विषधर सांप नहीं था, ये कोबरा नहीं था, ये केवल सांप के जात का था, देखने में सांप लग रहा था, नहीं तो बाप रे बाप, यदि सांप होता कोबरा होता तो बालक को जरूर डंस दिया होता। अब तक से इसने बालक को डंसा नहीं है, इसका मतलब ये सजातीय सांप था। जब सर्प चला गया तब लोग नीम का पत्ता, बंगाल में नीम है, नीम खाते हैं, नीम के पत्ता से झाड़ झपाड़ किए, सब पूरा सफाई उफाई किए, और तब किसी ने उनका नाम रखा निमाय, ताकि किसी का आंख न लगे। अब निमाई नाम रहेगा तो नीम से कड़वा होता है, सांप भी डरेंगे, सब डरेंगे, कोई कुलक्षण वस्तु सामने नहीं आएगी। क्रंदने रो, अब चैतन्य महाप्रभु दूसरा कुछ लेसन सिखा रहे हैं, अब एक नया लेसन सिखा रहे हैं। जैसा कि मैं कहा कि प्रभुपाद जी कहते हरे कृष्ण मोमेंट के फाउंडर आचार्य हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब थोड़ा बड़े हुए तब से फाउंडर आचार्य का काम करना शुरू कर दिए, नाम संकीर्तन, थोड़ा अभी घुटनों के बल चल रहे थे। क्रंदने रो छेल बलाइल हरिनाम, नारी सब हरि बोले हासे गौर धाम, तबे कत दिन कैल पद संकरण, शिशुगणे मिली कैल विविध खेलन। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे, जब रोने लगे तो स्त्रियां आती थी, स्वाभाविक है। जब कोई बालक रोता है तो जो भी रहता है आता है, सब टिटकारियां मारते हैं, कुछ लोग बोलते भी हैं। कैसे बोलते हैं गोपेश्वर है? बच्चों के लिए बोलते हैं ना, आओ ला 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 ला, चुप रहो चुप रहो, कुछ बोलते हैं ना, जिसको जो मन आता है बोलता है बच्चा को चुप कराने के लिए। लेकिन कुछ स्त्रियां इस प्रकार से कर रही थी, महाप्रभु और जोर से रो रहे थे। कोई खिलौना कोई कुछ ला रहा था लेकिन उससे असर नहीं पड़ रहा था। तब किसी कोई स्त्री हरिनाम करने लगी। जब हरिनाम करने लगी, चेतन महाप्रभु थोड़ा रोना थोड़ा स्लो किए, लेकिन रो रहे थे। जब सब मिलकर हरिनाम करने लगी तो बिल्कुल शांत हो गए, हरिनाम सुन रहे थे। जब जोर से हरिनाम करने लगी तो महाप्रभु खूब हंसने लगे हैं, उन लोगों को देख करके बड़े प्रसन्नचित हो गए। तब स्त्रियां समझ गई, ओ अब जब निमाई रोएगा तो इसको चुप कराने का सरल तरीका क्या है, हरिनाम। और चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि इन लोगों से हरिनाम करने का तरीका क्या है, रोना है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। जो भी चैतन्य महाप्रभु के इर्द गिर्द रहता था हमेशा हरिनाम करता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु सब लोगों से हरिनाम फाउंड कर दिए, हरिनाम संकीर्तन का, हरे कृष्ण महामंत्र। कितना सुंदर तरीका है लोगों से नाम जप कराने का, रो करके है? रो करके। हम लोग रोएंगे तो कोई नाम जप करेगा अभी है? भगवान चैतन्य महाप्रभु का ही अलग ये लीला है। इस प्रकार से नदिया बिहारी गौरचंद्र लीला कर रहे थे। चैतन्य भागवत में बहुत से लीलाओं का वर्णन है जो अपने घुटनों बल चल रहे थे। कृष्णदास कविराज को हम कहते हैं, तबे कता दिन कैला पद्म चक्रमान शिशुगण मिली कैला विविध खेलान। कालांतर में भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले घुटना के बल चल रहे थे, तीन क्रम, पहले पेट के बल उल्टे, पीठ से पेट के बल उल्टे, उसके बाद में घुटना के बल और पैर के बल। अब चलते हैं, तीन चलन होता है और तीनों को कहते हैं चलन। चलना शुरू किए, अब जब पैर से चलना शुरू किए तब अब सखा भी मिल गए, थोड़ा मतलब कि घर से बाहर भी जाने लगे। भगवान कृष्ण जब घुटना के बल चलते थे तो वर्णन किया गया है गोपाल चंपू में स्पेशली कि नंद बाबा का जो चौकट था बहुत ऊंचा था, तो चौकट से पार नहीं हो पाते थे, चौकट की इधर ही रहते थे और घुटनों के बल चलकर आते थे और चौकट पर बैठ करके एक पैर नीचे एक पैर उठा करके और दो वृक्षों को देखते थे। कुबेर के दो बेटे नल कुबर और मणिग्रीव जो वृक्ष के रूप में थे और वे वृक्ष नंदनंदन श्याम सुंदर को देखते थे। और उसके बाद में श्याम सुंदर पैरों से चलने लगे। जब बालक पैर से चलते हैं तो आंगन के इर्द गिर्द घूमते हैं और इस चलन को रघुपति उपाध्याय कहते हैं, अहम इहम नंदम वंदे जस्यालिंग परम ब्रह्मा। कैसे है वो शुरू में, हां श्रुति में तरे स्मृति में परे भारत भजन्ति भव भीता अहम हम नंदम वंदे यस्या लिंग ब्रह्म ब्रह्मा। मैं तो अरे कोई श्रुति स्मृति से डर कर करके श्रुति मितरे स्मृति परे, कोई श्रुति का अध्ययन करता है, कोई शास्त्र सुनता है, कोई महाभारत पढ़ता है, ये सब डर कर करके। लेकिन मैं भजन करता अहम हम नंदम वंदे, अरे मैं तो नंद बाबा को प्रणाम करता हूं जिसके आंगन में ऐसे परम ब्रह्म लीला किए थे, भगवान लीला किए थे, तो आंगन का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से सची माता के आंगन का यहां वर्णन किया गया है कि भगवान आंगन में अब चलने लगे और वहां पर मित्र लोग आते थे और मित्रों के साथ खेलना शुरू किए। उसके बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु घर से बाहर जाना शुरू किए, तो घर से जब बाहर जाना शुरू किए तो क्या नहीं, जब आंगन में चलना भगवान चैतन्य महाप्रभु शुरू किए, इसका मतलब नहीं घर में नहीं चलते थे, घर में चलते थे। जब जब सची माता और जगन्नाथ मिश्र घर में नहीं रहते थे तो चैतन्य महाप्रभु घर के सब वस्तुओं को उथल पुथल कर देते थे। वो दूध औटने के लिए दरखा तोड़ देते थे, मटकी तोड़ देते थे, सब उथल पुथल कर देते थे। और जब आवाज आता था कि मां आ रही है तो जाकर के आराम से सो जाते थे। अरे ऐसे कैसे हो गया, ये सब कौन यहां पर आया, ये सब कैसे हो गया। जब बाहर निकलना शुरू किए तो वहां जाकर के अलग अलग घरों में जाते थे डेली। चैतन्य महाप्रभु जब पैर के बल चलना शुरू किए तब से ही अपने घर में नहीं रहे, ऐसी बात नहीं कि संन्यास लेने के बाद, वो जब पैर पर चलना सीखे तब से ही घर में नहीं रहे, दूसरों के घर में ही रहते थे हमेशा। केवल सोने के लिए सची माता पकड़ कर लाया करती थी, नहीं तो दूसरे के घर में जाते थे, जाते थे किसी घर में खा लेते थे, कोई खा रहा होता वहीं पर बैठकर खा लेते थे। ये बालकों का स्वभाव है, कोई खा रहा है जाकर बैठकर खा लेंगे और कोई मना भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से चेतन महाप्रभु जाकर के खाया करते थे, किसी घर में चले जाते थे, दूसरे के बच्चों को मारते थे, पीटते थे, रुलाते थे, कुछ और बड़े हुए तो चोरी करना शुरू किए। ये तो उनका जातिगत धंधा है चोरी करना, ये कोई नया बात तो है नहीं, तो चोरी करना शुरू किए, घरों में चोरी करते थे। किसी घर में माखन इत्यादि नहीं होता था तो मटकी तोड़ देते थे, सब कुछ तोड़ फोड़ कर ठीक कर देते थे। और कोई पकड़े जाते थे, कोई पकड़ लिया चोरी करते हुए तो कान पकड़ते, क्षमा करना अब ऐसा नहीं करूंगा। और कोई डांटता था तो लगते थे रोने, और कोई और गुस्सा में तुम्हारे माँ बाप से कहूंगा तो तुरंत पैर पर पड़ जाते थे कि बस बस बस, और मेरे बाप माँ से मत गाना, जो हो गया बाप माँ से मत करा, इतना ही गाना, क्षमा करना। अब रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पैर पर पड़ गए, तो कौन ऐसा होगा जो पत्थर दिल वाला जो कि कंप्लेन करने जाएगा सची माता और जगन्नाथ मिश्र के पास। वो भी चेतन महाप्रभु के दर्शन कर कर लोग मुग्ध हो जाते थे, और उन लोगों का, इन नवदीप वासियों का, गौरमंडल वासियों का क्या सौभाग्य था कि जिनके पैरों पर चैतन्य महाप्रभु पड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, उनके सौभाग्य को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से बालकों के सत में चैतन्य महाप्रभु खेलने जाते थे, और कभी कभी खेल करके आने में देर हो जाती थी, देर होता थी, बहुत देर के बाद आते थे कभी कभी। एक दिन, मैं इस लीला के बाद कथा समाप्त करूंगा, एक दिन की बात है, भगवान चैतन्य महाप्रभु खेल करके आए और सची माता को कुछ ना कुछ कंप्लेन मिल गया था। हालांकि लोग कंप्लेन के रूप में नहीं कहे थे, सराहना के रूप में कि सची देवी आपका बालक कितना अच्छा है, हमारे घर में आता है, आप लोग इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, अरे हम तो ब्राह्मण हैं लेकिन उतने उच्च कोटि के नहीं जैसे आप हैं, हमारे घर में आता है और हम लोगों के साथ में खाने लगता है। तो लोग आनंद से कह रहे थे, कंप्लेन के भाव से नहीं कह रहे थे, आनंद से कह रहे थे। और कुछ लोग कहने लगे यहां तक कि निमाई कितना जिद्दी है, जब कुछ घर में नहीं होता तो तोड़ फोड़ देता है। तो मानो जिस प्रकार से यशोदा मैया को जब कंप्लेन जा रहा था तो यशोदा मैया ने सोचा हमारे घर में सब कुछ है, इतना माखन है, 900,000 गौवें हैं, नंद बाबा इसके लिए कपिला गाय रखे हैं, फिर भी श्याम सुंदर दूसरे घर में चोरी करने क्यों जाता है। और इसीलिए यशोदा रानी मथनी से एकदा गृह दासिसु यशोदा आनंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु दधि मंथनम स्वयं। वैसे ही सची माता को आश्चर्य हुआ कि क्या कारण है, हमारे घर में सब कुछ है तो ये निमाई दूसरे घर में क्यों खाने जाता है। तो सची माता अपने हाथ से बहुत सुंदर संदेश, खीर इत्यादि सब बनाई थी। एक दिन सची खाई संदेश आनिया मात बाटा भरी दिया बोली खाओ तो बसिया, खाओ तो बसिया। सची मैया बना करके रखी थी, जब सचिनंदन आए तो कहे कि बैठो यहां पर और देखो बेटा तुम्हारे लिए मैं क्या बनाई हूं, संदेश बनाई हूं, खीर बनाई हूं, केला है, तुम बैठो और खाओ। महाप्रभु मुड़ी डुलाए कहे ठीक है और महाप्रभु बैठ गए खाने के लिए। और खाने देख रहे थे उधर, मैया थोड़ा वहां देख करके चली गई। उसके बाद महाप्रभु क्या किए कि वो सब खाना छोड़ दिए। महाप्रभु एक शिक्षा देना चाहते थे जगत जननी माता सची को, वो खीर संदेश वो सब खाना छोड़ दिए और छिप करके बगल में जाकर के मिट्टी खा रहे थे, मिट्टी खा रहे थे। ये तो बोली गेला सची गृह कर्म करीते लुकाइया लागिया शिशु मृतिका खाईते। इस प्रकार से बालक को वहां छोड़ करके अपने काम के में सची लग गई और सचिनंदन मिट्टी खाना शुरू किए। कुछ समय के बाद मैया आई देखने के लिए कि सचिनंदन पूरा गौरहरी पूरा खा लिया, विशंबर पूरा खा लिया कि नहीं, पेट भरा कि नहीं और चाहिए इत्यादि पूछने के लिए। देखो सची हाय आई लो करी हाय हाय माटी काढ़ी लोया कहे माटी के न खाए। जब वो देख रही तो क्या देख रही है कि विशंबर तो मिट्टी खा रहा है। वो दौड़ करके आई और हाथ पकड़ ली कि हाय हाय तू नलायक बदमाश तू क्या कर रहा है, तू मिट्टी क्यों खा रहा है, माटी क्यों खाए, मिट्टी क्यों खा रहा है। अब देखिए महाप्रभु उत्तर क्या दे रहे हैं, बड़ा सुंदर बात है। चेतन भागवत में इसका और वर्णन किया गया है लेकिन यहां भी चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कृष्णदास कविराज और सब संक्षिप्त में किए हैं लेकिन इस लीला का विशद वर्णन किए हैं। तो मैया थोड़ा डांटी थी बदमाश कहीं का तो मिट्टी क्यों खा रहा है। तो महाप्रभु छोटे बालक थे लगे रोने, कांदिया बोली ना सितुन किने कर रोष तुम्हें माटी खाईते दिला मोर की वो दोष। अब भगवान रोने लगे, फफक फफक कर रोने लगे और कहते हैं मैया आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, इसे मेरा क्या गलती है, अरे आपने ही तो मिट्टी खाने के लिए दिया है, तुम्हें माटी खाईते दिला तुमने मुझको मिट्टी खाने के लिए दिया मोर की वो दोष, इसे मेरा क्या दोष है, मैंने क्या गलती किया, तूने मिट्टी खाने के लिए दिया। तो सची माता को आश्चर्य हुआ, झूठा कहीं का बदमाश, तो बोलता है मैं मिट्टी खाने के लिए दिया है? अरे मैं तो तुमको खीर संदेश इत्यादि दिया, खोआ है? खोआ संदेश खोई संदेश अन्न यतके माटी रो विकार ये तो इहो माटी से हो माटी की भेद विकार। तो मैया ने कहा रे तू बदमाश झूठ बोल रहा है, मैं तुमको संदेश दिया, खोआ दिया, खीर दिया खाने के लिए, तू बोल रहा है मैं मिट्टी दिया, मां होकर मैं ऐसा गलती कर सकती हूं, मिट्टी दूंगी अपने बालक को, इतना पागल अभी तक नहीं हुई हूं मैं, मिट्टी थोड़ी दिया, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु लॉजिकली सची माता को बतला रहे हैं, लॉजिक के द्वारा कहते हैं कि खोआ हुआ चाहे संदेश हुआ चाहे खीर हुआ ये सब है क्या मैया, थोड़ा सोचो फिलोसफिकली, ट्राई टू अंडरस्टैंड फिलोसफिकली। कहते हैं माटी रा विकार, ये सब के सब ये माटी का ही विकृत रूप है, मिट्टी से ही बना हुआ ये भी माटी है। कहते इहो माटी सेव माटी की विधा विचार, विचार थोड़ा करो मैया, फिलोसफिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो मैं खा रहा हूं वही मिट्टी है, वो खोआ और संदेश और खीर है वही मिट्टी है, तो विचार करके सोचो दोनों भेद क्या है, दोनों मिट्टी है, खाना है तो मिट्टी ही खाना है। माटी देह माटी भक्ष देख देख विचारी अविचार देह दोष की बोली तो पारी। तो मैया जो देह है मिट्टी से बना हुआ है, तो मिट्टी के देह को मेंटेन करने के लिए क्या खिलाना पड़ता है, बोलो ना कम से कम, मिट्टी। डाउट है, ये फिलोसफी महाप्रभु दे रहे हैं, ये मायावाद फिलोसफी दे रहे हैं महाप्रभु, मायावाद इसका ये प्रमाणित करता है कि उसमें बहुत मायावादी लोग थे और मायावाद का खूब प्रचार हो रहा था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु मायावाद को बचपन से ही पकड़ लिए थे, वो आए थे मायावाद का खंडन करने के लिए, मायावाद को खत्म करने के लिए, तो शुरू कर रहे हैं मायावादी होकर के, मायावादी उपदेश दिए। जैसे मायावादियों को खंडित करने के लिए, मायावादियों को प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीरी से केशव भारती से संन्यास लिए, मायावादियों से संन्यास लिए। जब आग में प्रवेश करना है तो आग का देह ग्रहण करना जरूरी होता है, चैतन्य महाप्रभु मायावादी संन्यास लिए, वैष्णव संन्यास भी ले सकते थे, लेकिन केशव भारती संन्यास क्यों लिए, क्योंकि मायावादियों को प्रचार करना था। तो मायावादी के प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु यहां पर मायावादी फिलोसफी यहां पर पेश कर रहे हैं मैया से। कहते हैं माटी देह माटी भक्ष देखा हो बिचारी, मैया थोड़ा सोचो ये देह माटी का है और मैं माटी खा रहा हूं, इसमें गलती क्या है, माटी के देह को मेंटेन करने के लिए माटी ही खाना जरूरी है। अविचारे देह दोष की बलि दे पारे, आप इसको विचार नहीं कर रही हैं, बिना विचार कर करके मुझे डांट रही हैं, अब मैं क्या कह सकता हूं, मां बड़ी हैं आप, मां हैं, लेकिन बात तो यही है कि मिट्टी का देह है, ये सब कुछ है, यानी सब कुछ एक है, मायावादी मतलब सब कुछ एक, भगवान और हम दोनों बराबर हैं, हैं? दो प्रकार के मायावादी होते हैं, एक कहलाते हैं निर्विशेष शून्यवादी और एक कहलाते हैं इम्प्रसनलिस्ट मायावादी। तो इम्प्रसनलिस्ट को भक्त बनाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरे प्रकार के हैं निर्विशेष शून्यवादी, शून्यवादी एक निर्विशेषवादी और एक शून्यवादी, जो शून्यवादी हैं उन लोगों को भक्त बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन निर्विशेषवादी को इम्प्रसनलिस्ट को, या सुखदेव गोस्वामी तेजस कुमार ये लोग निर्विशेषवादी थे, बाद में भक्त बन गए, ये बनारस के जो मायावादी थे निर्विशेषवादी थे, इसलिए बाद में चैतन्य महाप्रभु को भक्त बना दिए, लेकिन जो शून्यवादी थे उनके लिए बड़ा कठिन था, बौद्ध इत्यादि लोग हैं शून्यवादी मायावादी हैं। एनीवे लेट्स नॉट गेट इन दैट फिलोसफिकल डिस्कशन। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ये सिद्धांत दिए, जब छोटा मुंह बड़ा बात हो गया, सची माता जब यह बात सुनी कि सब कुछ तो एक समान है, चाहे मिट्टी का देह है संदेश है मिट्टी है सब बराबर है, सब मेंटेन करने के कुछ भेद नहीं है, तो मैया यहां पर विशिष्ट बात के सिद्धांत का को बतलाना शुरू किया, द्वैता विशिष्ट कहती है अंतरे विस्मित सची बलिल ताहारे माटी खाइते जन्य जोग की सिखार तारे। अब विशिष्टा द्वैत का ज्ञान बतलाने जा रही तो कहती है आश्चर्य के, हे जोगी महाराज, हे दार्शनिक फिलोसफर साइंटिस्ट गौर हरि, ये तो थोड़ा आप हमको बतलाइए कि आपको ये सिद्धांत किसने बता दिया, ये आप कहां से सीख लिए कि माटी का देह है और माटी खाने से मेंटेन होगा या जो कुछ भी खा रहे हैं सब मिट्टी हैं। के सिखाई लो तारे, तुम्हें कौन सिखाया बतलाओ। माटी रो विकार अन्न खाई लो देह पुष्टि होय, माटी खाई लो रोग होय देह जाए छय। और विशिष्टा द्वैत विशिष्ट रूप से इसको भेद बतला रही है, कह रही है कि मैं मानती हूं कि देह मिट्टी का है और मिट्टी के विकार से ही देह का भरण पोषण होगा। तो कह रही जो अन्न है वो भी मिट्टी है, लेकिन क्या है, ये मिट्टी का विकार है, मिट्टी का प्रोडक्ट है। तो मिट्टी के प्रोडक्ट खाने से देह पुष्टि हो, देह क्या होगा, पुष्टि को प्राप्त करेगा, संतुष्ट होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन माटी खाई लो रोग है देह जाए क्षय। मैया कितना सुंदर सिद्धांत, एक प्यार पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, कितना सुंदर। संसार में लोग भरण पोषण कर रहे हैं, देह को खिला रहे हैं, कोई मांस खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई रसगुल्ला खा रहा है, कोई बॉयल सब्जी खा रहा है, जो भी खा रहे हैं के कर रहे हैं देह को मेंटेन करने के लिए बस। अब मैया कह रही है कि देह को मेंटेन ही करना है तो मिट्टी के विकार अन्न के द्वारा यदि करोगे तो हृष्ट पुष्ट होगा, लेकिन मिट्टी से यदि रेह को मेंटेन करना शुरू करोगे तो रोग हो जाएगा। एक बार श्रीपाद जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी घर से निकाल दिए थे, जाओ तो अपने बड़ा पंडित समझता है कैसे अकाले बैरागी है लो, तुम अकाल में समय नहीं है, तुम कम ही समय में संन्यास ले लिया तो अपने को बड़ा समझता है कि बल्वाचार्य को भी तुम पछाड़ सकता है, जाओ गेट आउट। अब जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी निकाल दिए। जीव गोस्वामी कभी मधुकरी करते थे और नहीं तो वो राख और मिट्टी को, पेट भरना है ना, राख और मिट्टी को पानी में मिला करके पी लेते थे। कुछ समय के बाद उनको जॉन्डिस हो गया था, जॉन्डिस हो गया था इससे। तो वही बात है, माटी खाइला रोग है। और हम सब लोग जानते हैं जो छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं तो इतना बड़े बड़े केचुआ कीड़े निकलते हैं पेट में, निकलते हैं ना। अरे हाँ या ना बोलो ना, कुछ देखा नहीं है क्या? हम तो गांव वाले देखे भैया, शहर में तो सब क्या नाम कंक्रीट जंगल है, गांव तो है नहीं है? हम देखे हैं। तो माटी खाइला रोग है देह जाए छय। अरे देह का ही भरण पोषण करना है तो मिट्टी के विकार खा करके, अन्न को खा करके देह का भरण पोषण करो, मिट्टी मत खाओ, नहीं तो मिट्टी खाने से कहा देह जाए छय, देह नष्ट हो जाएगा, बीमारी पकड़ लेगा, रोग हो जाएगा। माटी रो विकार घटे पानी भर जानी, माटी पिंड धरी जा रो सोधी जाय पानी। एक सुंदर उदाहरण मैया दे रही है, कह रहे कि मिट्टी का ही घड़ा बना होता है, ठीक है, और मिट्टी के घड़े में हम पानी को डालेंगे तो क्या होगा, बोलते क्यों भैया है, उदाहरण करेगा ना। मिट्टी के घड़े में पानी डालोगे, चलो मिट्टी घड़ा शायद आप लोग देखे बम नहीं देखे होंगे ना है, चलो स्टील का बर्तन ले लो, बाल्टी ले लो, वही मिट्टी का ही बना हुआ है ना है। तो मिट्टी के बर्तन में यदि पानी डालोगे तो मिट्टी का बर्तन पानी को धारण करेगा, लेकिन मिट्टी का पिंड हो यानी धूल हो, 5 किलो धूल इतना खड़ा कर लो और उस पर एक बाल्टी पानी डालो, वो पानी धारण करेगा, क्या करेगा, सोख लेगा पानी को भी, पानी भी गया, मूल भी गया और शुद्ध भी गया, सब चला गया काम से। तो कहते हैं माटी पिंड धरी जदे शोधी जाए पानी, वो पानी भी चला गया। अब समझ रहे हैं ना, दोनों मिट्टी का बना है, एक घड़ा है और एक मिट्टी है। यदि मिट्टी में पानी डालोगे तो वो पानी को सोख लेगा, लेकिन मिट्टी के घड़ा में पानी डालोगे तो पानी यथावत रहेगा। कितना सुंदर फिलॉसफी है ना, दोनों मिट्टी का बना है। आत्मलुकाइते प्रभु बलिला तहारे, आगे कहना के हो माता नासी खाइला मोरे। अरे मैया ये तो बात आप पक्का अच्छा बात कहती हो, है भगवान, कितना सुंदर बात। अब भगवान तो केवल टेस्ट कर रहे थे या सिखलाना चाहते थे, मायावाद को बता रहे थे मैया को, लेकिन मैया पर इस मायावाद का कोई असर नहीं पड़ा है। भगवान सुंदर फिलॉसफी दिए कि ये संदेश, खोआ, खीर, ये सब मिट्टी है, तो इस मिट्टी से अंतर क्या है। मैया हाँ ये बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन नहीं, मैया तुरंत ना कर दिए, क्योंकि मैया सिद्धांत को जानती थी। इसीलिए कहा गया, महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत बोलिया चीते ना करो आलस। सिद्धांत समझने में आलस मत करना, पढ़ो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, सिद्धांत को समझो, नहीं तो मायावादी इसी प्रकार से। मुझे 1976 या 7 था, हम बनारस गए थे और एक मायावादी मिल गया था, और मुझे आज भी याद है, कह रहा था कि पानी का बूंद यदि पानी में चला जाता है तो पानी हो जाता है, तो हम आत्मा हैं, परमात्मा के साथ विलीन हो जाएंगे तो हम परमात्मा हो जाएंगे। नमो नारायण, नमो नारायण। उस समय तो बड़ा अच्छा लगा, सही बात कह रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ने के बाद पता चला कि नहीं नहीं, यदि साइंटिफिकली रिसर्च किया जाए तो बूंद जो है गया है वो यथावत उसी पानी में रहेगा, अपना अस्तित्व कभी नहीं खोएगा। ये कहां से प्राप्त हुआ? प्रभुपाद के ग्रंथों से। तो मैं अब खत्म करूंगा, लेकिन एक प्यार और जरूर पढ़ लूंगा। तो यहां पर महाप्रभु कह रहे हैं, अरे मैया इतना सुंदर बात आप बता रही हो, अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? ये बात पहले बताए तो मैं मिट्टी नहीं खाया होता ना। आगे कहना यहां माता नासी खाई लो मोरे, आपने ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताया, पहले बताना चाहिए। एबे से जानिलाम आर माटी ना खाई वो, छुधा लागे जबे तबे तुम्हार अस्तन पीबो। हे मैया मैं कान पकड़ रहा हूं, आज के बाद मिट्टी नहीं खाऊंगा, और जब भी भूख लगेगा तो आकर के मैं आपका अस्तन पान करूंगा, अब दूध ठीक है ना मैया, अब खुश हो ना है? महाप्रभु इस प्रकार से मैया से कह रहे हैं। ए तो बोली जननी कोलेते चाड़िया अस्तन पान करे प्रभु ईसत हासिया, ईसत हासी दिया। कितना सुंदर, आई मीन रियली, अब इतना कहकर के भगवान चेतन महाप्रभु मैया को खुश कर दिए, और मैया के जंगे पर चढ़ करके मैया के कोला में आकर के मैया का आलिंगन किए, और उसके बाद में मैया का अस्तन पान करने लगे। और जब भगवान मैया का अस्तन, कल मैं वर्णन किया था कि जो स्त्रियां अपने बच्चे को अपने अस्तन पान कराती है वो जानती है अस्तन पान कराने का आनंद, और जो बोतल पिलाती है अपने बच्चे को वो अस्तन पान कराने का आनंद नहीं जानती है। तो सची मैया अपना अस्तन पान करा रही थी गौर सुंदर को, और गौर सुंदर अस्तन पान करते हुए धीरे धीरे हंस रहे थे, ईसत हासिया, स्लाइटली स्माइल कर रहे थे, और मैया देख करके हंस रही थे। ए मते नाना चले ईश्वर देखाय बाल्य भाव प्रकटिया प्रकटिया पंचात लुकाय। इस प्रकार से अपने ईश्वर को छिपा करके भगवान चेतन महाप्रभु विभिन्न प्रकार का बाल लीला किए। अब इस प्रकार से भगवान चेतन मथुरा बड़े होने लगे, और बड़े होने के बाद क्या लीला किए हैं उसका वर्णन मैं कल करूंगा है? क्या लीला किए हैं, वो बड़ा होने के बाद क्या लीला किए हैं वो कल करूंगा, कल थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि पूरा अध्याय खत्म करना है एक दिन में. क्वेश्चन, एनी कमेंट? आई थिंक सब लोग अब मिट्टी खाने के लिए चलेंगे ही ना. चेतन महाप्रभु की फिलोसफी के अनुसार चावल दाल सब्जी तो मिट्टी ही है, लेकिन याद रखना एक मिट्टी खाने से रोग होगा तो देह क्षय हो जाएगा और एक मिट्टी खाने से देह पुष्ट होगा. तो चलिए देह को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि देह से भगवान का सेवा करना है. जय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जय. निताई गौर हरि.